मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 7 जून 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले दिनों से कुछ दिनों से हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बातें कर रहे हैं और मुझे यकीन है, यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग उस टॉपिक को एंजॉय कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन टॉपिक्स के माध्यम से आप के अंदर एक अलग किस्म की क्षमता भी डेवलप हो रही होगी। क्षमता इस मायने में फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस में अब आप देखते हैं कि 200-250 शब्दों में ही प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं और बट नेचुरल है कि उसके लिए हमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हमें यह जानने की जरूरत जरूर है कि अगर हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं और संक्षिप्त में अपने को लिमिटेड रख रहे हैं तो वो संक्षिप्त क्या हो। यानी कि हमें जानना तो थोड़ा सा ही है लेकिन उससे भी बड़ी बात यह जानना है कि वो थोड़ा सा क्या है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से हम एक एक टॉपिक को लेकर बातें कर रहे हैं उससे आपको यह जानने में मदद जरूर मिलेगी और मैं चाहूंगा कि आप इन टॉपिक्स को केवल कंटेंट के फॉर्मेट में मत देखें कि क्या कंटेंट हमको दिया गया है बल्कि इस रूप में भी देखें कि इनमें यही कंटेंट क्यों दिया गया है, कितना इसका विस्तार है, थोड़े से समय में थोड़ी सी बातों में कैसे ज्यादा से ज्यादा बातें शामिल की गई हैं, जो बातें शामिल की गई हैं उनके कोण क्या क्या हैं, उसमें परिचयात्मक कितना है, उसमें एनालिटिकल कितना है। जब आप इन सब बातों का भी मुआयना करेंगे तो मुझे लगता है कि आप इन टॉपिक्स का और अधिक फायदा उठा पाएंगे। तो आइए मित्रों, आज फिर हम इसी तरह के एक टॉपिक पर बात करते हैं और आज के लिए मैंने विषय चुना है भारत के विदेशों से संबंध। और नो डाउट कि ये जो भारत से विदेशों के संबंध है ये अभी लेटेस्ट सिचुएशन को ही लेकर के है, या यूं कह लीजिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के संबंधों में जो बदलाव आए हैं या यूं कह लीजिए कि विदेश नीति में जो थोड़ी सी तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं हम उन पर थोड़े विस्तार से बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मैं मुख्यतः दो तीन चीजें लेकर चलूंगा। पहला तो यह है कि जो विदेशों के साथ संबंध है इसको मैंने तीन भागों में बांटा है। हम देखेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अभी कैसे हैं, किस तरीके से आगे चल रहे हैं, हम किस तरह की डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। फिर सिलेबस में हमारे यह भी है कि दुनिया की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, उनमें भारत की भूमिका क्या है। तो उस लिहाज से हम विदेश के कुछ जो बड़े राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोपीय देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं थोड़ी सी दृष्टि उस पर भी डालेंगे, जैसे विकसित देशों के साथ संबंध आप कह सकते हैं। स्पेशली मैंने एक और इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स, वो है मुस्लिम देशों के साथ संबंध। ये मैंने जानबूझ करके इसमें रखा है क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और इनफैक्ट कह लीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब कुछ लोगों के मन में ये बड़ी आशंका थी कि पता नहीं मुस्लिम देशों के साथ अब भारत के संबंध किस तरीके के होंगे। ज्यादातर यही मान करके चल रहे थे कि खराब होंगे, वो उनकी एक बनी बनाई अवधारणा थी, उस आधार पर वो सोच रहे थे। तो अब क्या वस्तु स्थिति है इसके बारे में भी हम देखेंगे और इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताने की कोशिश करूंगा, जहां भी अवसर मिलेगा वो आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, हालांकि वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है होगा, और वो ये कि इसमें नयापन क्या है। मतलब मोदी जी जो जिस विदेश नीति को लेकर चल रहे हैं, एक तो चलिए हमारी शुरू से आजादी के बाद से एक विदेश नीति का ढांचा चला आ रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इसके बारे में आप जानते भी हैं। लेकिन डेफिनेटली जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो अपनी तरफ से भी वो कुछ न कुछ उसमें नया जोड़ते हैं, नए तौर तरीके अपनाते हैं, सभी प्रधानमंत्री ने किए हैं तो मोदी जी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी झलकियां भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगी और मैं वहां स्पष्ट भी कर दूंगा। तो दोस्तों, ये चार मुख्य पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा, जिनको आधार बनाकर हम इस डेली ऑडियो लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने पड़ोसी देशों से, जो हमारे सिविल सर्विस में स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, और केवल लिखा ही नहीं गया है बल्कि इसी पर सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे इसके आधार पर हम कह सकते हैं। मित्रों, आपको मालूम है और ये तथ्य कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण सार्क देशों के संघ जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको उन्होंने उस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। बुलाया ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्र के प्रमुख आए भी, पाकिस्तान तक के प्रधानमंत्री उसमें आए थे। तो एक बहुत अच्छी पहल थी और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। बल्कि उन्होंने नारा भी एक तरीके से दिया कि नेबर फर्स्ट, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए सबसे पहला स्थान रखते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि भारत फिर लगातार इस पर आगे बढ़ता भी गया है। मित्रों, अगर आपको ध्यान हो कि 2016 में नेपाल में जो संघ एक बैठक हुई थी राष्ट्रों की, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बहुत साफ तौर पर कहा था कि वे जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उनके लिए एक उपग्रह छोड़ेंगे। हालांकि वो नाम देना चाह रहे थे इसको दक्षिण एशियाई सार्क उपग्रह नाम दें, लेकिन वैसा संभव नहीं हो सका क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ राष्ट्र इसमें शामिल नहीं है। उस वायदे को उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पूरा किया और आपको मालूम है कि एक उपग्रह छोड़ा गया है G-SAT-9, वो दक्षिण एशियाई उपग्रह ही है वो G-SAT-9, जिसे आप यूं कह लीजिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको दी गई भारत की सौगात है। अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ है, श्रीलंका भी शामिल है, उनके अपने कारण है। पाकिस्तान श्रीलंका को चीन से इसकी मदद मिल रही है, दूसरे राष्ट्र दूसरे तरीके से अपना काम चला रहे हैं, फिलहाल वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कई देश इसमें शामिल हैं। शामिल होने वाले में मित्रों नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, बाकी देश इसमें शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, इस संघ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 7 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने जिस विषय का चयन किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, आपके प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, और नो डाउट कि अक्टूबर में जो मेंस के एग्जाम होने हैं उस दृष्टि से भी, और जानबूझ करके अभी तक मैंने जिन टॉपिक्स पर जनरली बात की है उससे हटकर एक नए टॉपिक को एडॉप्ट किया है। और इसका पर्पस यही है कि मेरी कोशिश है कि अब जबकि हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर उस पर बड़े मुकम्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सेक्टर से मैं टॉपिक लूं। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर के लिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से, इंटरनेशनल रिलेशन कह लीजिए, वह इंटरनेशनल रिलेशन से है। इसे आप शीर्षक के रूप में नाम दे सकते हैं, भारत के विदेशों से संबंध। राइट फ्रेंड्स, जब मैं यहां कह रहा हूं भारत के विदेशों से संबंध, तो यहां मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस संबंध का संबंध पिछले 3 सालों से है, यानी कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक भारत के विदेशों के से कैसे संबंध रहे हैं, केवल हम उसी को देखने समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि एग्जामिनेशन में लेटेस्ट चीजें ही पूछी जाती हैं, अदरवाइज तो भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ क्या हैं, उसकी क्या परंपराएं रही हैं, कैसे देशों के साथ संबंध चले आ रहे हैं, ये सारी किताबों में अवेलेबल हैं और आपने पढ़ भी लिया होगा। क्योंकि जब तक हम इस पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे तब तक आगे की बातों को जानना भी आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 साल के विदेश संबंधों पर आधारित है और इसमें मैं इनफैक्ट 4 डायमेंशन आपके सामने रखना चाहूंगा, मतलब 4 मेजर पॉइंट होंगे। पहला तो यह होगा कि हम ये देखेंगे कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। पड़ोसी देश चूंकि आपके सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उसमें अलग से मेंशन किया हुआ है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो नेबरिंग कंट्रीज के संदर्भ में ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो होगा फ्रेंड्स वो होगा मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध। ये बात मैंने इसलिए अलग से रखी है फ्रेंड्स क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, अगर आपको उस समय का ख्याल हो तो विदेश नीति के संबंध में लोग आशंका व्यक्त करने लगे थे कि भारत के संबंध मुस्लिम देशों के साथ अब उतने अच्छे नहीं रहेंगे, तनावपूर्ण हो जाएंगे। उसका कारण यही है कि लोग मान के चलते थे कि बीजेपी चूंकि वो कट्टर हिंदूवादी या आरएसएस कट्टर हिंदूवादी है तो मुसलमान दे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके साथ वो संबंध आगे नहीं बढ़ा पाएगी, या यूं कह लीजिए कि मुस्लिम देश ही भारत से थोड़ा सा किनारा कसने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो आशंका उनके दिमाग में थी। तो मैंने मुस्लिम देश को सेकेंड पॉइंट के रूप में लिया है। और जो तीसरा पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो होगा विकसित देशों के साथ, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है या यूरोप के जो देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इनको हम एक सामान्य तरीके से देखेंगे। इसी के साथ ही साथ जो फोर्थ पॉइंट होगा वो इस रूप में होगा कि पिछले 3 सालों में विदेश नीति के स्वरूप में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है उसकी एक फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, एक सॉलिड न्यू बन चुकी है। आजादी से लेकर अब तक ऑलमोस्ट हम अपनी विदेश नीति को उसी न्यू पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात ठीक है कि जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, प्रो अमेरिका, प्रो रसिया, फिर प्रो अमेरिका या दोनों में बैलेंस, इस तरह की स्थिति बीच बीच में आती रही है। और आपने अगर विदेश नीति का हमारा पूरा इतिहास पढ़ा हो आजादी के बाद का तो आपने महसूस किया होगा कि इस फाउंडेशन के बावजूद, यानी कि एक आधार भूमि होने के बावजूद, जब प्रधानमंत्री बदलते हैं तो विदेश नीतियों में भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। आप देखिए कि नेहरू जी के समय में कुछ बात थी, इंदिरा गांधी जी के समय में फिर कुछ बात हुई, फिर हम देखते हैं कि राजीव गांधी जी के समय में थोड़ा सा परिवर्तन आया, यहां तक कि गुजराल जी आए, छोटे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो उसमें थोड़ा थोड़े 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 परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुआ है और हमें उसे जानना बहुत जरूरी होगा। तो देखिए, जो फोर्थ पॉइंट है इसकी चर्चा मैं अलग से नहीं करूंगा, जब हम और तीनों देशों के संबंध में, तीनों समूहों के संबंध में जब बात करेंगे तभी बीच बीच में ये बात भी आती रहेगी कि उसमें नयापन क्या है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं भी अपने तरफ से वहां स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अपनी बात शुरू करते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं, हो ही गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो उन्होंने पहली बार एक नया काम किया था वो था कि जिसे हम दक्षेश कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उन राष्ट्र के प्रमुखों को बुलाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें राष्ट्र प्रमुख आए भी थे। पाकिस्तान के आने को लेकर के थोड़े से अंत समय तक वो थोड़ा सा वो बना हुआ था कि पाकिस्तान से आ रहे हैं कि नहीं नवाज शरीफ साहब, लेकिन अंततः वे भी आ गए थे। तो सच पूछिए तो ये नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा इंडिकेशन था कि उन्होंने यह कदम उठाकर बहुत साफ तौर पर अपने पड़ोसी राष्ट्रों को बता दिया कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं वो हमारे पड़ोसी देश रखते हैं, हम पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही सहयोग का रुख रखना चाहते हैं, बहुत ही दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हम समानता के सिद्धांत के आधार पर चलना चाहते हैं। अदरवाइज सामान्यतया मित्रों जो छोटे राष्ट्र होते हैं, कभी कभी आपने इस तरह की बातें पढ़ी भी होंगी कि वो आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर कि चूंकि भारत एक बड़ा देश है तो कुछ दादागिरी दिखाता है या हम पर डोमिनेट करना चाहता है, कभी कभी इस तरह की बातें सुनने में आ जाती हैं जबकि भारत के व्यवहार से ऐसा कहीं कुछ लगता नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो भारत हमेशा एक सहयोगात्मक और समान सिद्धांत के आधार पर ही इनसे संबंध विकसित करता रहा है, लेकिन फिर भी चलिए कभी कभी कुछ लोगों को लग जाता है, कुछ राष्ट्रों को लग जाता है, उनके पास उसके अपने कारण होते हैं, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात जो कही और वो ये कि नेबर फर्स्ट कि हमारे लिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो सबसे पहले हैं, हम उन्हें सबसे पहले महत्व देंगे। और आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले पड़ोसी देशों में ही गए और छोटे छोटे राष्ट्रों में गए, नेपाल जैसे छोटे देश में गए, मतलब छोटे छोटे देश में वो गए। और जाने के बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो कहा जा रहा है वो ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए है बल्कि इनफैक्ट हम उसे करके भी दिखाएंगे। और फिर एक शब्द और इजाद हुआ, वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, अभी वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यानी कि हम अपने पूर्वी एशिया के जो देश हैं, यानी कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, हम उनको महत्व देंगे, उनकी तरफ हम देखेंगे, सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये हो गया कि हम केवल चुप नहीं बैठेंगे, केवल हम देखेंगे ही नहीं या केवल एक समानता के आधार पर इंतजार नहीं करते रहेंगे कि वो आए हमसे कुछ मांगे और या हमसे कुछ चाहें और हम दें, बल्कि हम अपनी तरफ से आगे बढ़कर देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। आप देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से पड़ोसी राष्ट्रों के साथ प्रोएक्टिव होकर अपनी तरफ से आगे बढ़कर उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि अभी एक नई जो घटना हुई है जिसके बारे में अखबारों में काफी लिखा जा रहा है और जिसे नाम भी दिया जा रहा है उपग्रह कूटनीति। आपको मालूम है कि भारत ने कुछ ही दिनों पहले एक उपग्रह छोड़ा है जिसे हम, हालांकि है वो नाम उसका दक्षिण एशियाई उपग्रह नहीं रखा गया है, उसका नाम तो इनफैक्ट GSAT-9 है। ये बात अलग है कि वो दक्षिण एशियाई देशों को एक सौगात के तौर पर दिया गया है, एक गिफ्ट है भारत की तरफ जो लगभग 450 करोड़ रुपए जिस पर खर्च हुए हैं। इस उपग्रह के छोड़ने से जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं जिनके सच पूछिए कि उतनी आय भी नहीं है कि उनका खर्चा उठा सकें, इससे मदद ले सकेंगे और कई क्षेत्रों में इनको मदद मिलेगा। वे अपने देश की संचार प्रणाली को, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग बना सकेंगे। वो जो एक डिस्टेंस एजुकेशन है, टेली मेडिसिन है, DTH जैसी सुविधाएं हैं, उनका बहुत लाभ उठा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स जो होते रहते हैं, उनको पहले से उसके बारे में इंडिकेशन मिल सकेंगे, तो वो अपने आप बहुत, अपने यहां के जन धन हानि से बहुत ज्यादा अपने आप को बचा सकेंगे। नो डाउट फ्रेंड्स कि इसमें अभी कुछ राष्ट्र शामिल नहीं हुए हैं, उनके अपने कारण हैं, लेकिन वो भी ऐसा यकीन किया जा रहा है कि वो भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। जैसे अब श्रीलंका, श्रीलंका इससे जुड़ना चाहता है, लेकिन अभी वो जुड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि श्रीलंका इस तरह का जो फायदा है वो चीन के उपग्रह से ले रहा है, तो बट नेचुरल है कि चूंकि ऑलरेडी उनके पास एक उपग्रह है तो वो जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक उपग्रह कूटनीति के नाम से अखबारों में आपको काफी पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक नया एडिशन इसमें ये हुआ है। इसी तरीके से एक और नया शब्द अभी इजाद हुआ है, मैं आपकी तरफ आपका ध्यान उस तरफ भी दिलाऊंगा, वो है मित्रों भारतीय कूटनीति में बौद्ध धर्म या कह लीजिए या सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति, आप उसे ये नाम दे सकते हैं। और इस नाम को जो देने की जो बात कही जा रही है वो श्रीलंका के संदर्भ में बात हो रही है। आपको मालूम है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री जी श्रीलंका गए थे और श्रीलंका का उनका जो जाना भी हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था, है ना, जिस तिथि पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस पर बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीलंका ने आयोजित किया था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो वहां फिर बातचीत हुई और वहां जो प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन था उसमें आप देखिए कि दो बातें आपको बहुत स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई देंगी। पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि गौतम बुद्ध तो अब भारत के ही हैं और भारत से ही ये जो बौद्ध धर्म है श्रीलंका और दूसरे पूर्वी देशों की तरफ गया। तो उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीधे सीधे कहा कि हमारे पास एक सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि एक धार्मिक आधार है, मतलब हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं, तो निकट आने की हमारी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं जो ऐतिहासिक इस काल से मौजूद हैं। यहां मैं आपको एक एडिशन करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी एक संस्था ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ही एक सीनियर ऑफिसर होते हैं। इसका काम होता है कि वो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उसमें भारतीय संगीत, कला, साहित्य, नृत्य वगैरह के प्रोग्राम कराता है, और ठीक इसी तरह से दुनिया के जो देश हैं उनके इसी तरह के प्रोग्राम भारत में आयोजित करता है, तो ये कल्चरल एक्सचेंज का माध्यम है। यह मैं इस बात की चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि कल्चरल एक्सचेंज होना अलग बात है ना, उससे तो हम एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उस कल्चर की नींव पर संबंधों को खड़ा करना बिल्कुल अलग बात है, और उसमें अब हमारे प्रधानमंत्री जी आगे आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ एक और बात भी है फ्रेंड्स कि अगर बौद्ध धर्म को लें, जैसा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म काफी प्रोमिनेंट है, बौद्ध धर्म को लें तो उसी के आसपास दूसरे देशों में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म प्रचलित है, बहुत ज्यादा देशों में है, तो इस तरीके से बौद्ध धर्म के जो स्थल हैं ज्यादातर वो भारत में हैं, तो भारत में जो बौद्ध स्थल हैं वो पर्यटन का एक बहुत अच्छा केंद्र बन सकते हैं और पूरा का पूरा एक सर्किट बनाया भी गया है, तो यदि संबंध बेहतर हुए तो इसके माध्यम से एक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है और वो आर्थिक लाभ पर्यटन से जुड़ा हुआ लाभ है। तो आप देख रहे हैं कि यहां दो चीजें फिर से आपको दिखाई दे रही हैं कि बौद्ध धर्म तो आप बोधिसत्व का कूटनीति कह सकते हैं और फिर इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना, तो यहां भी हमें एक नई चीज एक नया रूप दिखाई दे रहा है। तो मित्रों इसके बाद देखिए कि अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई थी और कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो भारत के बहुत ही पक्ष में है, श्रीलंका के सबसे संबंध हमारे बेहतर होते जा रहे हैं, पहले श्रीलंका चीन की तरफ झुका हुआ था लेकिन अब फिर से वो भारत की तरफ आ रहा है और श्रीलंका ने अपने बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए चीन को सीधे सीधे मना भी कर दिया है, तो पड़ोसी देशों के साथ तो धीरे धीरे भारत के संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब बिना पाकिस्तान के ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ भारत ने मोटर वाहन के स्वतंत्र आगमन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसमें पाकिस्तान का होना जरूरी था लेकिन बिना पाकिस्तान के ही ये किया गया। और एक जो दूसरी बहुत बड़ी सफलता मिली थी फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले इस्लामाबाद में दक्षेस का सम्मेलन हो रहा था, पाकिस्तान में दक्ष एशिया का सम्मेलन होना था, भारत ने उसमें जाने से मना कर दिया। केवल फिर वो सम्मेलन रद्द करना पड़ा, लेकिन क्यों रद्द करना पड़ा, इसलिए नहीं कि क्योंकि भारत नहीं जा रहा था, बल्कि जब भारत ने न जाने की घोषणा की तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी नहीं आएंगे। तो जब इतने देश नहीं आएंगे तो फिर सम्मेलन रद्द करना पड़ा। सोच करके देखिए, ये भारत की ताकत को दिखाता है, या ताकत को नहीं, मतलब हम ये कहें कि ये भारत के साथ जो निकट के संबंध है उसको दिखाता है। नेपाल के साथ भारत के संबंध जरूर थोड़े से खराब हो गए थे मधेशी समुदाय को लेकर के, वहां जो नया संविधान लागू हुआ, लेकिन अब वो स्थिति भी काफी बेहतर हो गई है। दोस्तों अब मैं आता हूं मुस्लिम देशों के साथ में। तो देखिए, कारण मैं बता चुका हूं कि लोगों को क्यों आशंका थी, लेकिन इस बीच में भारत के संबंध जो मुस्लिम राष्ट्र है उनसे बहुत अच्छे हुए हैं। सबसे ज्यादा महत्व तो सऊदी अरब का है मुस्लिम राष्ट्र में, क्योंकि वहीं उनका पवित्र मक्का मदीना है, और संयुक्त अरब अमीरात का महत्व है। फिर जो शिया मुसलमानों के बीच में ईरान का सबसे ज्यादा महत्व है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब की भी यात्रा की है, संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा की है, और ईरान की भी यात्रा की है, और वहां फिर बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और आपको ये शायद मालूम हो, और नहीं मालूम हो तो ये नोट कर लेना चाहिए कि संयुक्त अरब अमीरात ने तो मोदी जी की पहल पर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने की जगह तक अपने यहां दी है, जो एक बहुत बड़ी बात है। फिर आपको यह भी मालूम है कि हमारे इस बार के रिपब्लिक डे पर अबू धाबी के जो राजकुमार थे, जो प्रिंस थे, वो हमारे अतिथि के रूप में भारत आए थे। याद होगा आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ईरान यात्रा पर गए थे, और वहां पर चाबार बंदरगाह को विकसित करने के बारे में जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसकी तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। चीन ने भी कोशिश की थी कि चाबार बंदरगाह उसको मिल जाए, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया था, और भारत को उसने दिया है। तो यह भी शो करता है कि मुस्लिम राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कैसे बेहतर होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं विकसित देशों पर। विकसित देशों के बारे में ज्यादा बात करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं। अमेरिका के साथ भारत के संबंध आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे हो गए हैं। वही अमेरिका था जिसने मोदी जी को उस समय वीजा नहीं दिया था जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब मोदी जी 3-4 बार वहां जा चुके हैं, अभी कुछ समय के बाद फिर अमेरिका जाने वाले हैं। कितने अच्छे संबंध होते जा रहे हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया के तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत आए हैं, और हमारे यहां के भी जो प्रधानमंत्री जी हैं वहां गए हैं। तो इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, या यूं कह लीजिए कि विदेशी स्तर पर भारत एक बार फिर से अमेरिका, चीन जैसे दूसरे बड़े राष्ट्र हैं, लेकिन एक उसकी इमेज बहुत अच्छी हो गई है, और एक लीडर के रूप में, एक सम्मानित लीडर के रूप में इमर्ज हो रहा है। और इस हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक नया जो एक स्वरूप दिखाया है भारतीयों का, वो है विदेशों में रहने वाले भारतीय, कि जब भी वहां विदेशों में जाते हैं तो वहां जो NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनका इतना बड़ा सम्मेलन होता है, वो उसको संबोधित करते हैं। तो ये जो NRIs हैं अब भारत से अपने को बहुत निकट से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वे देश भी देखते हैं कि उनके वहां रहने वाले जो भारतीय हैं अपने प्रधानमंत्री जी का किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। तो वो भी उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, शक्ति है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको थोड़ी झलकियां अपने वर्तमान 3 साल के दौरान की जो विदेश नीति है, विदेश नीति का जो स्वरूप है उसके बारे में दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ न कुछ आप लिखने की स्थिति में जरूर आ चुके होंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।